अक्टूबर 2020 की प्रहरी दुर्ग 1920 100 साल पहले सन 1920 की शुरुआत में यहोवा के लोगों में प्रचार काम के लिए जोश बढ़ाया गया। उस साल के लिए उन्होंने भजन 118 के 14 को अपना सालाना वचन चुना, जहां किंग जेम्स वर्जन बाइबल में लिखा है, प्रभु मेरा बल और भजन है। यहोवा ने वाकई इन जोशीले भाई बहनों को प्रचार करने के लिए बल दिया। इसलिए उस साल कोलपोर्टरों यानी पाइनियरों की गिनती 225 से बढ़कर 350 हो गई और पहली बार 8,000 से ज्यादा प्रचारकों ने मुख्यालय को अपने प्रचार काम की रिपोर्ट भेजी। यहोवा ने उन्हें उम्मीद से बढ़कर आशीषें दी। उनमें कमाल का जोश था। 21 मार्च 1920 को यह इंतजाम किया गया कि भाई जोसेफ एफ रदरफर्ड एक भाषण देंगे। विषय था, आज जीवित लाखों लोगों की मृत्यु कभी नहीं होगी। भाई उन दिनों संगठन के काम की अगुवाई करते थे। इस भाषण के लिए बाइबल विद्यार्थियों ने न्यूयॉर्क सिटी का सबसे बड़ा हॉल किराए पर लिया और करीब 3,20,000 निमंत्रण पत्र लोगों में बांटे। उन्होंने दिलचस्पी रखने वालों को बुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाइबल विद्यार्थियों ने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा लोग ये भाषण सुनने के लिए आए। हॉल 5,000 से ज्यादा लोगों से खचाखच भर गया था। इसके अलावा और 7,000 लोग आए थे, मगर उन्हें वापस भेजना पड़ा क्योंकि बैठने की जगह नहीं थी। प्रहरी दुर्ग में बताया गया कि ये अंतर्राष्ट्रीय बाइबल विद्यार्थियों की एक बहुत बड़ी सभा थी और इससे लोगों को बहुत दिलासा मिला। बाइबल विद्यार्थी ये संदेश सुनाने के लिए काफी मशहूर हो गए कि आज जीवित लाखों लोगों की मृत्यु कभी नहीं होगी। उस वक्त उन्हें पता नहीं था कि राज का संदेश उन्हें दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है और इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। फिर भी उनमें कमाल का जोश था। बहन आइडा ओमस्टेड ने, जिन्होंने 1902 में सभाओं में जाना शुरू किया था, उन दिनों के बारे में कहा, हम जानते थे कि पूरी मानव जाति को बहुत सी आशीषें मिलने वाली हैं, इसलिए हम प्रचार में ये खुशखबरी सबको बताते थे। भाइयों ने खुद छपाई करना शुरू किया। सन 1920 में न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन बेथल के भाइयों ने हमारी कुछ किताबें पत्रिकाएं खुद छापना शुरू किया, ताकि लोगों तक सच्चाई का ज्ञान समय पर पहुंचता रहे। इसके लिए उन्होंने बेथल से कुछ दूरी पर 35 मर्टल एवेन्यू में एक बिल्डिंग किराए पर ली और छपाई की मशीनें खरीदकर वहां लगाईं। लियो पेल और वॉल्टर केसलर नाम के दो भाई जनवरी 1920 में बेथल में सेवा करने गए थे। भाई वॉल्टर बताते हैं कि जब वो बेथल पहुंचे तो क्या हुआ। जब छपाई विभाग के निगरान ने हम दोनों को देखा तो कहा कि अभी दोपहर के खाने में 1.5 घंटा बाकी है। फिर उन्होंने हमें ये काम सौंपा कि हम तहखाने से किताबों के कुछ बक्से ऊपर ले आए। भाई लियो बताते हैं कि अगले दिन क्या हुआ। हमें उस बिल्डिंग की निचली मंजिल की दीवारें धोने का काम दिया गया। मैंने जिंदगी में कभी इतनी गंदी दीवारें साफ नहीं की थी, मगर हम ये काम प्रभु के लिए कर रहे थे, इसलिए हमने खुशी खुशी किया। कुछ ही हफ्तों के अंदर हमारे जोशीले भाइयों ने प्रहरी दुर्ग छापना शुरू कर दिया। पहली मंजिल पर हाथ से चलाने वाली छोटी मशीन लगाई गई थी। उस मशीन से 1 फरवरी 1920 की प्रहरी दुर्ग की 60,000 कॉपियां छापी गईं। इस बीच तहखाने में भाइयों ने एक और मशीन लगाई, जिसे उन्होंने बैटलशिप यानी युद्ध पोत नाम दिया। कुछ समय बाद उन्होंने स्वर्ण युग यानी सजग हो ये पत्रिका भी छापना शुरू किया। उन्होंने जो पहला अंक छापा वो 14 अप्रैल 1920 का अंक था। उन भाइयों ने दिल लगाकर काम किया और उनकी मेहनत रंग लाई। ये साफ दिख रहा था कि यहोवा उन्हें आशीष दे रहा है। आइए हम आपस में मिलकर रहें। यहोवा के वफादार लोग नए जोश के साथ उसका काम कर रहे थे और अब उनके बीच प्यार और एकता थी। मगर क्या वो उन बाइबल विद्यार्थियों की मदद करने के लिए कुछ कर सकते थे जिन्होंने 1917 से 1919 के मुश्किल दौर में संगठन को छोड़ दिया था? आइए देखें कि उनकी मदद करने के लिए क्या किया गया। 1 अप्रैल 1920 की प्रहरी दुर्ग में एक लेख छापा गया, आइए हम आपस में मिलकर रहें। जिन्होंने संगठन छोड़ दिया था उन्हें उस लेख में प्यार से ये बुलावा दिया गया, हमें पूरा भरोसा है कि हर कोई जो प्रभु की आज्ञा मानना चाहता है वो बीती बातों को भूल जाएगा और वापस प्रभु के पास लौट आएगा और उसका काम करने के लिए उसके लोगों के साथ एक हो जाएगा। कई लोगों ने इस बुलावे को स्वीकार किया। एक पति पत्नी ने संगठन को ये खत लिखा, हमने पिछले 1-1.5 साल कोई प्रचार काम नहीं किया जबकि बाकी लोग पूरे जोश से इस काम में लगे थे। हम मानते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की, हम ये गलती फिर नहीं दोहराना चाहते। इनके जैसे कई भाई बहन लौट आए और यहोवा के काम में लग गए और उनके लिए बहुत काम बाकी था। समाप्त रहस्य का नया संस्करण बांटा गया। बाइबल विद्यार्थियों ने जब समाप्त रहस्य किताब निकाली तो 1918 में उस पर रोक लगा दी गई थी। ये दरअसल शास्त्र का अध्ययन किताब का 7वां खंड था। उन्होंने समाप्त रहस्य किताब की ढेर सारी कॉपियां छिपा कर रख दी। फिर उन्होंने 1918 में इसी किताब का एक नया संस्करण निकाला और इसे पतली जिल्द वाली किताब के रूप में छापा। उन्होंने 21 जून 1920 को ये नया संस्करण बांटने का अभियान शुरू किया और इसे जोर शोर से लोगों में बांटा। सिर्फ पाइनियरों को नहीं बल्कि सभी प्रचारकों को इस अभियान में हिस्सा लेने का बढ़ावा दिया गया। उनसे कहा गया, हर मंडली के बपतिस्मा पाए हुए लोगों को इस अभियान में हिस्सा लेना चाहिए। जो कोई ये काम कर सकता है उसे खुशी खुशी करना चाहिए। उसे ठान लेना चाहिए कि वो लोगों को ये किताब देकर ही रहेगा। एडमंड हूपर नाम के भाई ने इस अभियान में हिस्सा लिया था। वो उन दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि इस अभियान में हिस्सा लेने वाले कई लोगों ने पहली बार सही मायनों में घर घर प्रचार किया था। भाई कहते हैं, तब जाकर हमें एहसास हुआ कि हमें कितना काम करना था, हमें पहले इसका अंदाजा नहीं था। यूरोप में काम को दोबारा व्यवस्थित किया गया। पहले विश्व युद्ध के दौरान यूरोप के कई देशों के बाइबल विद्यार्थियों और मुख्यालय के बीच संपर्क सही से नहीं हो पाया था। भाई रदरफोर्ड चाहते थे कि अब वहां के भाई बहनों की हिम्मत बंधाई जाए और प्रचार काम को दोबारा व्यवस्थित किया जाए। इसलिए 12 अगस्त 1920 को भाई रदरफोर्ड और 4 और भाई ब्रिटेन और दूसरे देशों के लंबे दौरे पर निकल पड़े। जब भाई रदरफोर्ड ब्रिटेन गए तो वहां के बाइबल विद्यार्थियों ने 3 अधिवेशन और 12 जनसभाएं रखी। इन अधिवेशनों और सभाओं में कुल मिलाकर 50,000 लोग हाजिर हुए। प्रेरित दुर्ग में बताया गया कि भाई का दौरा कैसा रहा। भाई बहनों को हिम्मत मिली और उनका जोश बढ़ गया। उनके बीच प्यार और एकता का बंधन मजबूत हुआ। उन्होंने साथ मिलकर प्रचार किया और इससे उन्हें बहुत खुशी मिली। जब भाई रदरफोर्ड पेरिस गए तो वहां एक बार फिर उन्होंने इस विषय पर भाषण दिया, आज जीवित लाखों लोगों की मृत्यु कभी नहीं होगी। भाषण सुनने के लिए इतने सारे लोग आए कि पूरा हॉल भर गया। 300 लोगों ने कहा कि वो इस बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। बाद के हफ्तों में भाई रदरफोर्ड और कुछ भाइयों ने एथेंस, कायरो और जेरूसलम का दौरा किया। वहां जिन लोगों ने दिलचस्पी दिखाई थी उनके लिए भाई रदरफोर्ड ने जेरूसलम के पास रामल्ला नाम के कस्बे में एक शाखा दफ्तर खोला ताकि वो वहां से साहित्य ले सके। इसके बाद भाई यूरोप लौट गए और वहां उन्होंने मध्य यूरोपीय शाखा दफ्तर खोला। उन्होंने वहां भी साहित्य छापने का इंतजाम किया। नाइंसाफी का पर्दाफाश किया गया। सितंबर 1920 में बाइबल विद्यार्थियों ने स्वर्ण युग का 27वां अंक निकाला जो कि एक खास अंक था। इसमें खुलकर बताया गया कि 1918 में बाइबल विद्यार्थियों पर कितना जुल्म किया गया था। भाइयों ने युद्धपोत नाम की छपाई मशीन पर रात दिन काम किया और इस खास अंक की 40 लाख से ज्यादा कॉपियां छापी। वो पत्रिका पढ़ने पर लोगों को एक सनसनीखेज घटना के बारे में पता चला जो बहन एमा मार्टिन के साथ हुई थी। बहन एमा कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो शहर में एक पाइनियर थी। वो 17 मार्च 1918 को बाइबल विद्यार्थियों की एक छोटी सी सभा में गई थी। वहां 3 और भाई थे जिनके नाम थे ई हैम, ई जे सोनेनबर्ग और ई ए स्टीवंस। उस सभा में एक ऐसा आदमी था जो बाइबल के बारे में सीखने के इरादे से नहीं आया था। उसने बाद में बताया, मैं वहां इसलिए गया था क्योंकि सरकारी वकील के दफ्तर से मुझे वहां जाने का आदेश मिला था। मुझे वहां से कुछ सबूत इकट्ठा करने के लिए कहा गया था। वो जिस सबूत की तलाश में आया था वो उसे मिल गया, यानी समाप्त रहस्य किताब। कुछ दिन बाद बहन एमा और उन 3 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर इल्जाम लगाया गया कि वो एक ऐसी किताब बांट रहे हैं जिस पर रोक लगा दी गई है और ऐसा करके वो देश का कानून तोड़ रहे हैं। बहन एमा और उन 3 भाइयों को दोषी करार दिया गया और उन्हें 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उन्होंने कई बार अपील की मगर उनकी अपील ठुकरा दी गई और आखिरकार 17 मई 1920 को उन्हें जेल हो गई। मगर जल्द ही कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें राहत मिली। बहन एमा और उन भाइयों के साथ जो हुआ उस घटना के बारे में भाई रदरफर्ड ने 20 जून 1920 को सैन फ्रांसिस्को शहर में हुए एक अधिवेशन में बताया। ये सुनकर अधिवेशन में आए भाई बहनों का खून खौल उठा और उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को एक तार भेजा। तार में ये संदेश लिखा था, हम मानते हैं कि कानून की आड़ में श्रीमती एमा को जो सजा सुनाई गई वो सरासर नाइंसाफी है। सरकारी अधिकारियों ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके श्रीमती एमा को फंसाया और उन पर झूठा मुकदमा चलाकर जेल भेज दिया। अधिकारियों ने जो किया वो बिल्कुल गलत है। अगले ही दिन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने बहन एमा और बाकी 3 भाइयों की सजा रद्द कर दी। उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। सन 1920 के आखिर में जब बाइबल विद्यार्थियों ने साल भर की घटनाएं याद की तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। ये वाकई एक यादगार साल था। मुख्यालय में काम काफी जोर शोर से होने लगा। अब सच्चे मसीही पहले से ज्यादा जोश के साथ लोगों को बताने लगे कि परमेश्वर का राज ही सभी इंसानों की समस्याओं का हल करेगा। अगले साल यानी 1921 में राज की सच्चाई का ऐलान और भी जोर शोर से होने वाला था। लेख समाप्त।